पहला राजा अध्याय 13, अध्याय 13 पद 1 और 2। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, लॉस एंजलिस में एक सोने की वेदी है। मेरे मन में आया कि वहां जाकर चिल्लाऊं, वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है। अध्याय 13 पद 2 और 3। कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा, वो उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर भी राख गिर जाएगी। उसने भविष्यवाणी की कि एक राजा का उदय होगा जो दाऊद के वंश से होगा और जिसका नाम योशिय्याह होगा। ये तब की भविष्यवाणी है जब योशिय्याह का जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु उसने भविष्यवाणी में निश्चित किया कि योशिय्याह क्या करेगा। वो ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं नाश करेगा, और उनके जानने के लिए कि ये सच में परमेश्वर का वचन है, उसने उन्हें एक चिन्ह दिया, ये वेदी फट जाएगी और इस पर भी राख गिर जाएगी। अध्याय 13 पद 4। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और वो उसे अपनी ओर खींच ना सका, उसका हाथ किसी काम का ना रह गया था। अध्याय 13 पद 5 से लेकर 11 तक। और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर, और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा ने वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिसे तू जाएगा। इसलिए वो उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उसे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। ये जवान नबी कैसे यहूदा से आया और भविष्यवाणी की, और कैसे राजा का हाथ सूख गया और फिर ठीक हुआ। और बूढ़े नबी ने पूछा, क्यों, वो किस मार्ग से चला गया, और उसके पुत्रों ने उसे बताया। अध्याय 13 पद 13 से लेकर 31 तक। और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काटी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काटी बांधी और वो उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया। और उसने पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा, हां वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूं, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा या पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उसे ना लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर ले आ कि वो रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उससे झूठ कहा, अतएव वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी ना माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वो खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वो लौटा ले आया था गधे पर काटी बंधाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसको मिला और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गदा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां बूढ़ा नबी रहता था ये समाचार सुनाया। ये सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन का विरुद्ध किया था, इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उसे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काटी बांधो। जब उन्होंने काटी बांधी तब उसने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया, और ये भी कि सिंह ने ना तो लोथ को खाया और ना गधे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की लोथ उठाकर गधे पर लाद दी और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया, और उसने उसकी लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग हाय मेरे भाई ये कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं यानी बूढ़ा नबी मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का ये जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास धर देना। ये एक रोचक कहानी है जिसमें हमारे लिए एक मुख्य सीख है, वो है कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है उस पर पूरी तरह ध्यान दे, ना कि मनुष्य पर कि वो हमसे क्या कह रहा है। इस समय अमेरिका में एक नया अभियान चल रहा है जिसे वे चरवाहे की शिक्षा कहते हैं, जिसमें आप स्वयं को एक चरवाहे को सौंपते हैं जो आपको आत्मिक विकास और वृद्धि में लेकर चलता है और मार्गदर्शन करता है। अतः आप प्रभु में एक धर्मवृद्ध मनुष्य को अपनाते हैं जो अनुभवी हो और अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, वो आपका चरवाहा होता है। वो बताएगा कि आप कब मकान खरीद सकते हैं, कब बेच सकते हैं, कब आप गाड़ी खरीद सकते हैं और आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए आदि। मेरा अर्थ है, हर निर्णय के लिए आप उसके पास जाते हैं और वो चरवाहे की नाई आप पर और आपकी उन्नति पर ध्यान रखता है। वो बताता है कि आपको कब क्या करना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से अपने इस चरवाहे को समर्पित होना है। आप अपना पूरा दशांश उसको देंगे और अपने जीवन के सारे निर्णय उसी की अगुवाई में लेंगे। ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रवर्तक प्रधान चरवाहे होते हैं और बाकी सब चरवाहे उनके अधीन काम करते हैं। ये उस व्यापार के समान है जिसमें एक मनुष्य अपने अधीन बहुत से प्रतिनिधि रखता है और बिक्री से कुछ अंश धन उसको मिलता है और उसके प्रतिनिधियों के और प्रतिनिधि होते हैं जिनके द्वारा की गई बिक्री का भी कुछ अंश उस प्रमुख व्यक्ति तक पहुंचता है। इस तरह जो सबसे ऊपर होता है उसको अंश अंश करके बहुत अधिक धन मिल जाता है। इसलिए जो चरवाहे शिखर पर है उनको सब चरवाहे अपना अपना दशांश देते हैं और समय के साथ वे भी शिखर पर पहुंचते हैं। इस तरह उनका ये व्यवसाय चलता है। आज इस तंत्र में बहुत लोग जुड़ गए हैं। वे कहते हैं, यदि आपका चरवाहा आपसे कुछ करने को कहे तो आपको उसकी बात मानकर उसे पूरा करना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वो गलत है तो परमेश्वर उससे लेखा लेगा। आप सही है, क्योंकि आप अपने चरवाहे की बात मानकर उसका पालन करते हैं, इसलिए आप सही है। चाहे जो आपने किया वो गलत ही क्यों हो, आप निर्दोष होंगे, क्योंकि आपने अपने चरवाहे की बात मानी है और उस पर आश्रित रहे हैं। जो भी गलती आपने की उसके लिए परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी चरवाह होगा, क्योंकि ऐसा करने को उसने आपसे कहा था। यदि वे मात्र इस वचन को पढ़ें तो वे जान जाएंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ वचन में कहा है उसके अनुसार वो हरेक जन को उत्तरदायी ठहराता है। इस जवान नबी से प्रभु ने कहा, जब तुम वहां जाओ ना रोटी खाना और ना उस स्थान में पानी पीना, और जब लौटो तो उस मार्ग से मत लौटना जिस मार्ग से तुम जाओगे। परंतु बूढ़े नबी ने उसे मिलकर कहा, मेरे साथ घर चलो और रोटी खाओ और पानी पियो। जवान नबी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने मुझे ऐसा ना करने की आज्ञा दी है। ओह, देखो, मैं भी एक नबी हूं, मैं बूढ़ा हूं, परमेश्वर के एक दूत ने मेरे पास आकर कहा, जाओ उसे बुलाकर घर ले आओ। बूढ़े पुरुष ने झूठ कहा। उसने उस नबी से वो करने को कहा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था, और फलस्वरूप जवान नबी ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की सुनने, उस पर चलने और उसकी आज्ञा मानने का उत्तरदायित्व आपका है, और परमेश्वर इसका उत्तरदायी आपको ही ठहराएगा। वो जवान नबी वहां गया, रोटी खाई और पानी पिया, और बूढ़े नबी की भविष्यवाणी सच हो गई कि तू घर वापस लौटने नहीं जाने पाएगा, परमेश्वर उसको घर पहुंचने से पहले उठा लेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इस वाक्य के बाद जो यरोबाम को हुआ, परमेश्वर ने उसे चुनौती दी। अध्याय 13 पद 33 और 34। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वो उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। और ये बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वो धरती पर से नाश किया गया।